नारायण 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 नारायण। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षे गुरु आत्मा दैवता अमाया अनुवृत्या यही तुषेत आत्मा आत्मदोहरि सर्वतो मनसो संगम आदो संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रश्रयम च भूतेशध्वा यथोक्ति तस्माद् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। जिसको उत्तम श्रेय की आवश्यकता है वो गुरु के अभिगमन करे और भागवतान धर्मान शिक्षेत, भागवत धर्मों का ज्ञान प्राप्त करे, उनकी सेवा पूर्वक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस दृष्टि से सेवा भी कैसे करे, अमाया और अनुवृत्तिया। इस सेवा के दो विशेषण बताए कि सेवा में निष्कपट भाव हो। कपट का भाव रख करके सेवा नहीं की जा सकती है, नौकरी की जा सकती है। पट दूर करने के लिए ही तो सेवा की जा रही, वहां तुम कपट ले आए तो कहां से पट दूर होगा। तो कपट रहित होके गुरु की सेवा करे और अनुवृत्तिया। वृत्या वृत्या अनुवृत्या, सेवा अपनी इच्छा से नहीं होती है, अपनी कामना से नहीं होती है, गुरु की कामना से, गुरु की इच्छा से होती है। उनको जो अभीष्ट है वो कर्तव्य है, गुरु का अभीष्ट कैसे जाने। तो भागवत में ही अन्यत्र वर्णन है उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमः अधमः अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितं पितुः। गुरु भी पिता होता है, वो जन्म देता है। संतति दो तरह की है, एक विद्या के द्वारा, वंश दो तरह से चलता है, एक विद्या के द्वारा वंश चलता है, एक संतति के द्वारा वंश चलता है। विद्या के द्वारा माने नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महंतं। इस तरह से नारायण समारंभा श्रीकंदाचार्य मध्यमां अस्मद्गुरु पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। तो विद्या से भी वंश चलता है। जैसे हम लोग पाणिनेय कहलाते हैं, हम पाणिनेय क्यों कहलाते हैं कि संस्कृत में व्याकरण के सिद्धांत हम महर्षि पाणिनेय के द्वारा जो प्रोक्त हैं उनका पालन करते हैं, इसलिए हम पाणिनेय के वंशज हैं, पाणिनेय कहलाते हैं। वशिष्ठ के वंशज हैं तो हम वशिष्ठ गोत्री या वाशिष्ठ कहलाते हैं। जिनका गोत्र ज्ञात नहीं है उनके लिए एक सामान्य विधि बना दी गई, कश्यप के संतान हैं, इसलिए काश्यप गोत्र, जिसको अपना गोत्र ध्यान न हो तो वो काश्यप गोत्र कहता है, कश्यप की हम संतान, महर्षि कश्यप। तो ये विद्या के द्वारा वंश चल रहा है और हम उनके पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं, उनके प्रपौत्र हैं इत्यादि, इस तरह से आनुवंशिक रूप से संतति के द्वारा वंश चलता है। तो जब इस श्लोक में कहा गया अकर्तो चरितम पितुः, तो यहां पितुः से तात्पर्य दोनों प्रकार के जनक, पिता भी और गुरु भी, तो उनकी सेवा कैसे करे, तो उसके ग्रेडेशंस दिए हैं। जैसे अब आजकल तो नंबर सुनकर के हमको पसीना आ जाता है, 99% हमको स्वप्न में भी नहीं ध्यान था। हमारे जमाने में अगर मोर देन 75% ले आए तो डिस्टिंक्शन मार्क है, पीठ ठोकी जाती थी। अब 75% क्या 95% वाले को एडमिशन नहीं मिलता है, हाथ हो गई, एडमिशन नहीं, स्टॉप। तो खैर हम तो अभी अपना पुराना ही चलाएंगे, जैसे हमारे जहां चलते 75% 60% 45% 33.5% एंड उससे बिलो। तो सुपर क्वालिटी वाला शिष्य पुत्र कौन है, जो अपने गुरु और पिता के मन की बात समझ ले। इतना गुरु और शिष्य का नैकट्य है कि गुरु के मन में कोई बात आती है, पिता के मन में कोई बात आती है तो उसको पता चल जाता है, होता है हमको मालूम है। अरे नौकरों तक को हो जाता है, हमारे यहां थे तो उनको मालूम था कि इनके ये मित्र आए तो इनको क्या चाहिए, तो वो आए बैठे तब तक तो उनको क्या चाहिए, मालिक कहेंगे तो ला करके वो पहले ही तैयार रहता था, फलाने हां ले ले आए सरकार, इनको क्या देना उनको मालूम था। तो उत्तमश चिंतितम कुर्यात्, अपने माता पिता और गुरु के मन की इच्छा या भावना या जरूरत समझ करके जो पूरा कर दे वो डिस्टिंक्शन मार्क वाला है। इशारे से जो कर ले समझ ले वो फर्स्ट क्लास वाला। कहना ना पड़े, कुछ इशारा ऐसे कर दिया कि समझ गया, वो फर्स्ट क्लास। कहने पे जो श्रद्धा पूर्वक करे वो सेकंड क्लास। कह दिया गुरु ने, पिता ने, मां ने, स्वामी ने, तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक दौड़ के करे वो 50% मार्क्स, 45-50%। कहने पे करे तो, लेकिन श्रद्धा पूर्व। अच्छा पिताजी हो जाएगा, बाप कह रहे हो जाए, मैंने कह दिया हो जाए, काहे को परेशान हो जाएगा ना, हो जाएगा बस डरिए, हो गए तो कर तो दिया लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, उसको थर्ड क्लास 33.5% वाला। पास तो है लेकिन नॉट वेरी गुड। तो उस जो आज्ञाकारी है भले अश्रद्धा से, उसको तो आपने थर्ड क्लास कर दिया, और जो आज्ञा न माने वो उसकी कहां गिनती आएगी। तो अकर्तो चरितम पितुः, वो चरितम माने डर्ट, वो पिता के डर्ट के समान है, जैसे और डर्ट निकल गई उसी तरह वो डर्ट के समान है, मतलब वो पुत्र या शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। ये श्रीमद् भागवत के ही अनुसार मैं मापदंड बता रहा हूं। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् पुत्र, तो अमाया अनुवृत्या निष्कपट भाव से सेवा करनी है। पट को जो पर्दा है उसको दूर करने के लिए सेवा की जाती है। कपट करोगे तो पर्दा दूर कहां होगा और मल जम जाएगा। गुरु के ऊपर एहसान करने के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कई लोगों को ये भ्रांति हो जाती है, अगर हम नहीं होंगे तो गुरु जी की सेवा कौन करेगा। हर सेवा स्वयं करे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम नहीं होंगे तो सेवा कौन करेगा। हम गुरु की सेवा कर रहे हैं ये अभिमान, ये भी सेवा का अपराध है। सेवा पा करके कृतार्थता का अनुभव करना चाहिए। हमको सेवा मिली, उसमें लागदात न करें, कंपटीशन न करें। हनुमान जी वाली प्रसिद्ध घटना और सुनाने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हो। हनुमान जी सदैव अटेंटिव रहते हैं और राम जी के मन में जो आवे उत्तमश चिंतितम कुरियात वाले हैं, जो उनके मन में इच्छा होती है रघुनाथ के वो हनुमान जी दौड़ के कर देते हैं। कथा ये आती कि भरत और सबके सब ताकते रह जाए, नंबर ही ना आवे भगवान। अरे रघुनाथ इशारा देख, कुछ तो इशारा करें रघुनाथ, तो हम करें। वो इशारा तब करें जब कोई इशारा करने लायक मौका रहे, वो हनुमान जी को पता चल जाए, झटके करके धर दिया। तो आप लोगों को सब कथा बहुत अच्छे ढंग से मालूम, खूब प्रसिद्ध संत लोग बड़े बढ़िया ढंग से, हम भी जब मूड में होते तो बड़े आराम से कहते हैं। लिस्ट बन गई और लिस्ट बन के सेवा का बंटवारा हो गया। राम जी उठेंगे तो सबसे पहले दर्पण कौन दिखाएगा यहां से लेके, शयन करेंगे तो दूध का गिलास पान करा के कुल्ला कौन करा के, यहां तक सारे दिन की सेवा बट गई। हनुमान जी का नाम हनुमान जी सवेरे से उठ करके आए और उसमें सीता जी से दस्तखत भी करवा लिए, कि हाथ भाभी भाभी तो फिर पैर दबाए। रघुनाथ से भी साइन करवा लिए, रघुनाथ हंस दिए, चलो ठीक है। सेवा में बंटवारा नहीं होता है, बंटवारा नहीं, अवसर देखना चाहिए। सब सेवाएं बट गई, हनुमान जी जा दौड़ के आए सेवा के लिए। तो माय डियर ये रघुनाथ का ऑर्डर है, क्या है देख लो, ये सेवा का बंटवारा हो गया है, अपने अपने बंटवारे के अनुसार लोग सेवा करेंगे। तो हनुमान जी का जो उनका तो नाम ही नहीं कहीं, लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम है। उनका इस लिस्ट में जो सेवाएं नहीं लिखी हैं वो इन लिस्ट नहीं है, तो सब आपस में देखने लग गए। मामला तो गंभीर है, करोगे क्या। तो जो इसमें लिस्टेड नहीं है वो तो कोई कर सकता है, हां तो ठीक है। राम जी के आगे बैठ गए और लगातार राम जी के दर्शन कर रहे, ये तो और बढ़िया हो गया। हनुमान जी ने सेवा ले ली, जब राम जी को जम्हुआई आएगी तो चुटकी बजाएंगे। जब जम्हुआई ली आती तो चुटकी बजाई जाती है, छींक आती है तो जीवेम श्रद्धा सतम कहा जाता है। अंग्रेजी वाले इसको गॉड ब्लेस कर देते हैं, हमारे यहां जीवेम श्रद्धा सतम कहते हैं। ये सब चीजें रोज सुने तो और अच्छी आफत आ गई। पहले तो कम से कम सेवा कर लेकिन उधर जाता तो कंटिन्यूअसली वो ताकते ही रहता है। कब जब वाई आएगी कुछ पता है? दिन भर तो बीत गया, किसी तरह रात्रि को सोने का समय आया तो हनुमान जी अंदर घुसे, उनकी सेवा है। तो माता जी ने कहा, जानकी ने, माई डियर ये तो आउट ऑफ बाउंड है, यहां तो मेरी सेवा है, यहां तो कोई प्रवेश नहीं करता है। तो माता जी, मेरी सेवा का क्या होगा? मैं क्या बताऊं, यहां तो नहीं आ सकते हो। तो आप ये गारंटी ले लो कि राम जी को जमवाई नहीं आएगी तो मैं नहीं आऊंगा। आप कह दो कि जमवाई नहीं आएगी, मैं नहीं आऊंगा। सीता जी कहां से कह दे कि नहीं जमवाई आएगी? अरे सोने के पहले तो जमवाई आती ही आती है। तो अगर जमवाई आएगी तो मुझे तो चुटकी बजानी है, मैं तो आऊंगा। सीता जी कहे तो मेरी पर्सनल सेवा, यहां तो किसी का एडमिशन ही नहीं मेरे अलावा, तो कैसे होगा? नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो भक्त कभी झगड़ता नहीं है। आग्रह कर दिया, नहीं हमारी सेवा, हम तो नहीं जाएंगे झगड़े ना, ठीक। हमको सेवा करनी है तो भगवान के बेडरूम के ऊपर जो कंगूरा था वहां बैठ गए। अब भगवान को कब जमवाई आएगी पता नहीं, तो हम लगातार चुटकी बजाने लग गए। और चुटकी बजाने लग गए तो आदत पड़ी थी चुटकी बजाने, तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय। अब बड़ी मस्ती आ रही है, श्री राम जय राम, अंधेरे का समय, एकांत, कोई सुने श्री राम जय राम। अब हनुमान जी चुटकी बजाएं तो राम को जमवाई लेनी पड़ेगी। तो राम जय मुंह खोल के बैठे। माता जी ने देखा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है प्रभु, मुंह क्यों खोल रहे, जबरन तकलीफ है? ऊपर देखे थे, माता जी ऊपर देखने क्या है, कुछ तो नहीं प्रभु। अब मुंह तो बंद नहीं कर सकते, बोले कैसे? ये मौनियों के साथ आज सवेरे बात कर रहे थे, अगर कभी कभी जैसे हम मौन होते हैं तो हम मौन इशारा करते हैं, दूसरा बोल रहा होता वो भी मौन में ही उत्तर देता है, अरे तू तो बोल भाई। तो और मुंह खुला हुआ है, माता जी को समझ आया, प्रभु बताओ क्या बात है, रुआसी हो गई, क्या बात है, दासी को क्या अपराध हो गया? नहीं समझ में आया तो बहू की गति सास तक, मैया आओ। क्या कथा लंबी करे, पर मैया आई, सब माताएं आ गई, सारे भाई आ गए, नौकर चाकर आ गए, रघुनाथ का मुंह खुला होगा, सब पूछे प्रभु क्या बात है। ऊपर जब कहीं से समस्या का समाधान, तो गुरु जी बुलाए गए, गुरु जी आए, रघुनाथ ने उनको देख दंडवत की, लेकिन मुंह तो खुला ही हुआ है, श्री राम जय राम, जय जय राम चल रहा है, और हनुमान जी बस अपने आंसू बह रहे हैं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, आनंद ले रहे समाज। बशी जी, क्या बात है रघुनाथ, क्या है समस्या, सब तो है, हनुमान कहां है? रघुनाथ कह रहे, इन्होंने पहली बार हनुमान जी का नाम लिया, बोला कहां है, हनुमान को बुलाओ। सब लोग हैं, हनुमान कहां है? हनुमान को आवाज दी गई, रामराज जी तो एक सेकंड कर बंदर को कूदने में कितनी देर, यो कूदे दम से आ गए। जैसे ही कूद किया है तो भगवान को दंडवत करनी है, तो जैसे ही दंडवत की तो चुटकी बंद हुई, जैसे ही चुटकी बंद हुई भगवान ने अपना मुंह भर किया, अरे हनु, वशिष्ठ जी क्या बात है, ये तुम स्वामी सेवकों के बीच में क्या बातचीत हो रही है हनुमान? रघुनाथ ने पूछा, इन्हीं से पूछ लो। तो हनुमान जी से पूछा, क्या बात है रघुनाथ, क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि सब सेवा का बंटवारा हो गया था, तो हमारे लायक कोई सेवा ही नहीं थी, तो हमने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। अब हमको अंदर प्रवेश करना मना था, तो हम ऊपर जाके चुटकी बजा रहे थे। रघुनाथ ने कहा मेरे जमुहाई लेने पे चुटकी बजाएगा, तो उसकी चुटकी बजाने पे हमको जमुहाई लेनी है। बजने कहा है लिस्ट लाओ, लिस्ट लेकर के वशिष्ठ जी ने भार दिया गुरु जी का रघुनाथ के ऊपर। कोई नहीं, जिनको जो सेवा मिले सो कर। अमाया अभिमान नहीं आए। नरसिंह मेहता भी कहते हैं, प्रसंग अलग है, मन अभिमान न आए पर दुखे उपकार करे तो इससे गुरु सेवा में दत्त रहे तो मन अभिमान न आने दे। अमाया किसी प्रकार की माया नहीं रखे, ये न सोचे कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस देव करोड़ों विवेकानंद बना सकते थे, केवल एक मेरे से काम चल गया, इसलिए हमको उन्होंने किया। उनके पास अन्य सामर्थ्य है। अनुवृत्तिया माने सेवा के योग्य बन करके सेवा करे। देवो भूत्वा देवम यजेत, देव की पूजा करने के पहले अपने में देवत्व का आधान करना चाहिए। गुरु की सेवा करनी है तो स्नान कराना है तो उसके पहले स्वयं स्नान कर ले। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा क्रम लिखा है कि सोते समय सबसे पहले गुरुजी सोए, फिर रघुनाथ सोए, फिर लक्ष्मण सोए, और अरुण शिखा सुनकान मुर्गे की आवाज सुनके पहले लक्ष्मण जी उठे, वो तैयार हुए रघुनाथ जी के पहले, फिर रघुनाथ जी तैयार हुए गुरुजी के पहले, फिर गुरुजी को लोगों ने तैयार किया। तो पहले स्वयं स्नान करे, तिलक धारण करे, उत्तम वस्त्र पहने, महंगे वस्त्र पहने ऐसा नहीं है, लेकिन स्वच्छ हो, धुले हुए हो, अगर सामर्थ्य है तो फटे हुए कपड़े न पहने। मैं इस शास्त्र की बात हम बता रहे हैं, फैशन की बात नहीं बता रहे हैं। फटे हुए और गंदे कपड़े पहनने वाला, गंदे दांत वाला, गंदे नाखून वाला, अस्वच्छ केश वाला अगर व्यक्ति है तो लक्ष्मी उसे छोड़ के चली जाएगी, चाहे नारायण क्यों न हो। इसलिए सेवा के पहले अपने को सेवा के लायक बनाओ। वो सब आगे और आएगा। यहां पर गुरु की सेवा के पहले गुरु की सेवा की योग्यता प्राप्त करो। अयोग्य व्यक्ति गुरु की सेवा नहीं कर सकता, काम कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। एक मानसिक वृत्ति बननी चाहिए और इस प्रकार से सेवा करके। और लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन इतने में थोड़े महोजानी हैं सयाने, उनके पास भागवतां धर्मान शिक्षित, भगवान की भक्ति भावना कैसे उद्भूत होगी, कैसे जागृत होगी, कैसे पुष्ट होगी और कैसे परिपुष्ट होगी, इन प्रश्नों को करें। तो जिससे कि माने प्रैक्टिकल चेष्टा प्राप्त, कैसे कैसे करना है। अरे बड़ी सूक्ष्म बात है, भगवान की सेवा के लिए किस प्रकार का पुष्प प्रयोग में आता है इसका ज्ञान अगर नहीं है तो सेवा नहीं हुई। निरंतर भाव के भूखे हैं, भगवान भाव ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में भाव होता तो तुम जिज्ञासा करते कि किस क्रिया से भगवान प्रसन्न होते, ये पहले होता है। जिसकी पर तुम्हारा प्रेम होता है उसको जो चाहे समझ लो, पूछते महाराज जी वो क्या पसंद है, क्या पसंद करते हैं, क्या चीज पसंद है। 10 जनों से पूछते, कभी कभी तो हमसे पूछते लोग आपको क्या पसंद है। और सच्ची बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे लिए, हमको कुछ पसंद ही नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आशासन पे जो मिल जाता वही हमको बहुत पसंद है। बिलीव मी, अंदर से मैं रिलिश करता हूं जो आता है। तो खैर ये तो प्रसंगांतर मैंने इसलिए कह दिया कि फिर और कोई खुसर फुसर न हो जाए। एक बार हमने दही बड़े का दृष्टांत दे दिया, तो जब देखो तो 15 दिन तक दही बड़े ही रोज दही बड़े हमारे लिए आने लगे। तो वो तो हमने उदाहरण लिया, मैं पहले कहता हूं आई डोंट रिलिश। मैंने हमारी विश्वास करो इस तरह से नाटक हो गया कि मन में इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। विश्वास करो मेरी बात, बिल्कुल कोई इच्छा। आप भूख लगती कुछ गड्ढा भर जाए, कभी कभी तो हम बासी रोटी पे भी हाथ मार देते हैं, गड्ढा भर जाए बस। और कभी कभी तो फिर रस और पूरी मिलती है, वो भी रिलिश करते हैं। काली रोटी धौली दाल मिलती है। तो ये कहना कि भगवान तो भाव के भूखे हैं और हम, ये कपट है। भगवान के प्रति तुम्हारे मन में भाव है तो पूछो ना भगवान को क्या प्रिय है, जो उनके क्लोज हैं उनसे पूछो उनको किस तरह का ढोकला पसंद है। कई तरह का ढोकला है, कौन से आम का रस पसंद है, ये सब पूछो। तो कौन सा फूल पसंद है उस फूल को अर्पण करना है। कैसी माला बनाई जाती है, फूल कैसे तोड़ना है, इसकी विधि है माय डियर। कई लोग फूल तोड़ करके और बाएं हाथ में धर लेते हैं, वो फूल सेवा के लायक नहीं होता है। कोई न कोई पात्र होना चाहिए जिसमें फूल तोड़ के रखे जाए। अपने हाथ में रखे हुए शुद्ध नहीं माने जाते हैं। कपड़ा रख लो, कोई लोग कहता है कि पत्ते ही रख लो, उसी के ऊपर रख लो। फूल धो करके नहीं चढ़ाए जाते हैं, धो दिया तो उच्चिष्ट हो गया, खाली पानी छिड़क दिया जाता है। कई लोग शंकर जी के जल चढ़ाए जाते हैं, लोटे में उसे फूल भर लिया, बेलपत्र पर शंकर जी के पास उधार लिया, उसे फूल निकाल चढ़ा दिया। चलो जिसको ज्ञान नहीं उसकी बात अलग है, लेकिन जानकारी के हिसाब से शंकर जी के लिए जो लोटे में जल लेके जाते हैं तो फूल और बेलपत्र नहीं डालना चाहिए, अलग से ले जाना। तो ये एक आध उदाहरण मैंने, भोजन कैसे ठाकुर जी को लगाया जाता है, कैसे अमनिया बनाया जाता है, इन सबकी विधि है। हमारे पुष्टि मार्ग में तो पूरा किस दिन क्या भोग आएगा सब दिखा है। अरे पुष्टि मार्ग में क्यों, हमारे तिरुपति में महाविनिष्ठ बनी हुई है ये। तो किसी जानकार व्यक्ति से भागवत धर्म माने भगवान के भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें, ये भागवत धर्म है। इन भागवत धर्मों के आचरण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान को मैं फिर कहता हूं, बात सही है कि भगवान भाव के भूखे हैं, यह सत्य है, लेकिन भाव तुम्हारे लिए शॉर्टकट न बन जाए। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं, यहीं से गया था मैं कलकत्ते में एक जगह, बस इतना बताऊंगा और नहीं बताऊंगा, नहीं तो निंदा हो जाएगी। वहां हम गए थे, रह रहे थे, मच्छू भाई वहां जाकर के देख के आए थे ठीक जगह, तो हमको भेजा, जो ऐसे भेजते नहीं वहां पे, किन्हीं संतों ने, यहां के ट्रस्टी भी हैं, उनके आग्रह से मैं वहां गया था। तो खैर वहां भगवान के लिए कैसा बढ़िया भाव था हमको देखने को मिला। और सब छोड़ो, वहां 3 तरह का दूध आता था, एक 12 रुपए किलो का, एक 14 रुपए किलो का, एक 16 रुपए किलो का। दूध वाले ने मुझे बताया 12 रुपए का किलो का दूध भगवान के लिए लाता था, 14 रुपए किलो का मेरे लिए और 16 रुपए किलो का परिवार के लिए। सच्ची घटना बता रहा हूं, एकदम सच्ची। हम गए नहीं तो दोबारा वहां भगवान के, भगवान तो दूध का भोग लगाना है। हमारे पंडित जी लोग जब सम्मान नहीं होता है तो यज्ञ पवितार्थ अक्षदान समर्पण यानी कर देते हैं पूजा कर्मकांड करने के लिए। तो कोई चीज नहीं है तब की बात अलग है, वरना शॉर्टकट मत करो। भगवान तो जल से चुल्लू किए नवा, एक चुल्लू भर जल दे दो। तुम्हारे लिए चुल्लू भर उपयुक्त तब होगा जब तुम्हारे पास साधन नहीं है। अगर तुम्हारे पास साधन है परिवार के लिए तो 16 रुपए किलो का दूध आ रहा है, बच्चे की बर्थडे पार्टी में हम 1.25 लाख रुपए दो, 1.25 लाख में आजकल क्या होता है बर्थडे पार्टी में, आजकल 1.25 लाख में नहीं होते कोई पार्टी शार्टी है, ज्यादा लगता है। और भगवान के लिए वही 1.25 का रेट, ये सीखना पड़ता है। भाव का मतलब है, देखो कर्मकांडी लोग बैठे हैं, श्राद्ध कर बहुत कठिन काम है। श्राद्ध कर जिस ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म की विधि मालूम वो पूरा पंडित है। तो श्राद्ध कर्म की बहुत सी विधियों में लिखा है और छोड़ के अपने ऐश्वर्य के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध माने श्रद्धा, तुमको कितनी श्रद्धा है श्रद्धा के अनुरूप तुम करो। श्रद्धा नहीं है तो फिर ठीक ही ठीक है। तो अगर राजा है तो राजोपचार से श्राद्ध करे, संपन्न श्रेष्ठी है तो उस अनुसार करे। 11 ब्राह्मणों को करा दे भोजन, नहीं 11 ब्राह्मणों की सामर्थ्य है तो एक ब्राह्मण को करा दे, कभी कभी वो भी सामर्थ्य नहीं तो थोड़ा सीधा भेज दे। अगर सीधा भेजने का सीधा माने वो सामान दे दे, अगर वो भी सामर्थ्य नहीं है तो घास खोद करके किसी गाय को खिला दे तो भी राजा को जो फल मिलता वही गाय के खिला। लेकिन किसको, जिसके पास इस एक आदमी को खिला। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, मैं सच्ची बता रहा हूं, पठानकोट में अब तो भगवान के कृपा से बड़े संपन्न हो गए। हम उस समय थोड़ा घूम फिर लेते थे, एक घर के दरवाजे से निकले तो घर के परिवार के सब लोग भाग गए। हमने पूछवाया क्या बात है क्यों भाग गए, उनके पास आधा चम्मच घी नहीं था कि गुरु महाराज की आरती कर सके, मारे शर्म के वो घर छोड़ के चले गए। सच्ची घटना। वो परिवार वाले भी तो हैं, मैं नाम एड्रेस सब बता सकता हूं, जीवित है, सबके सब जीवित हैं, बल्कि थोड़ा बढ़ गए। हमको जब पता चला तो हम लौट करके फिर लौट गए, उस किसी का लौट के जाते और किसी का जाओ आरती लाओ और उसको करें। होता है आधा चम्मच घी, क्या होता है आधा चम्मच घी नहीं है इसलिए बेचारे मारे शर्म के घर छोड़ के चले गए। आंसू आ गया। हम लोग लिए आधा चम्मच घी क्या है, उतना तो पतीले में ही वैसे चला जाता है, नहीं है कभी कभी सामर्थ्य, आधा चम्मच घी नहीं होता है। मैंने अपनी आंखों से अनुभव किया, परिवार का नाम बता सकता हूं, पठानकोट में बजरी कंपनी में। अब तो भगवान की कृपा से वो बहुत संपन्न है, बहुत प्यार करते हैं। तो अगर ये नहीं है तब गैया को घास छील के खिला दो, कभी तो वही फल मिलेगा जो राजा को उस तरह संपन्न कर। कभी कभी ये भी परिस्थिति आ जाती है, कहीं ऐसी जगह गए जहां घास भी नहीं है गैया खिलाने, तो क्या करें, तो कहा ऐसे उठा करके हाथ और मैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आपको श्राद्ध अर्पित कर रहा हूं, आज मेरे पास कोई साधन नहीं है, पूरा का पूरा उसको श्राद्ध का फल मिलेगा जिसने भावना पूर्वक श्रद्धा अर्पित की। ये विधि है, लेकिन इस विधि को लेकर के कोई शॉर्टकट कर दे कि चलो मैं 10 गैयों को गारा चारा दिलवा देता, चलो एक की बजाय 4 गैयों खिला देता हूं, तो ये फिर वैष्णव धर्म नहीं हुआ। वैष्णव धर्म के तात्पर्य ये हुआ, वैष्णव धर्म माने विष्णु को परमात्मा को प्रसन्न करने वाला धर्म, ये वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म माने यही नहीं कि वो कौन सा भोग आ रहा है, ये नहीं। वैष्णव धर्म का तात्पर्य है किस आचरण से भगवान की प्रीति प्राप्त होगी। तो जिसके हृदय में प्रीति होगी वही जिज्ञासा करेगा और वही उस तरह का चिंतन करेगा। फूलमाला बनाते समय भी, अरे और तो और नहाते समय, लिपस्टिक लगाते समय, श्रृंगार करते समय भी ध्यान में श्री कृष्ण हैं, क्योंकि ठाकुर जी के सामने हम सेवा में जाने वाले हैं। अगर हम गंदे संदे जाएंगे तो ठाकुर प्रसन्न नहीं होंगे, और अगर हम ब्यूटीफुली अपने को डेकोरेट करके जा रहे हैं तो हमको सुंदर देख करके चूंकि कृष्ण प्रसन्न होंगे इसलिए श्रृंगार कृष्ण के लिए हो रहा है, अपने लिए नहीं हो रहा। ये भागवत धर्म है। हम श्रृंगार किस लिए कर रहे हैं? तो भागवत धर्म का मतलब है वो चेष्टाएं, वो क्रियाएं, वो चिंतन जिनसे भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो, भक्ति भाव जागृत हो, उनकी साक्षात क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे गुरु के पास, जिन साधनों के कारण, जिन यही माने जिन कर्मों के द्वारा आत्मा आत्मदो हरि ही, जो हमारी सबकी अंतर आत्मा है श्री कृष्ण, ये लाभ हुआ आत्मा। दूसरा विशेषण लगाया आत्मदह। आत्मदह माने एक तो भगवान हमारी आत्मा है, और आत्मदह माने जो हमारा भक्ति भाव पूर्वक भगवान की सेवा करता है, भगवान प्रसन्न होकर के दुनिया की सब चीजें तो देते ही देते हैं, अपने आप को भी अर्पित कर देते हैं। ये आत्मदोहरी की आत्मदोहरी का अर्थ है, भगवान अपने आप को दे देते हैं। बहुत मैंने अब इसको अगर किस स्तर तक आप सोच सकते हो, यही तुष्येत। तुष्येत माने तुष्य होना माने संतुष्ट होना। कभी कभी तो भगवान से कुछ लोग जबरदस्ती भी कुछ करवा लेते हैं, वो तुष्येत अर्थ नहीं हुआ। कभी कभी कुछ लोग जबरदस्ती नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा, चाहे जो आना पड़ेगा आपको, अरे भाई जरूरी काम है, नहीं आपको तो आना पड़ेगा, हमारा भाव नहीं रहते, वो तुष्येत नहीं हुआ। तो शेत माने अपने हृदय से भगवान, कैसे भगवान, जो आत्मा है हमारी, और आत्मदा अपने आप को भी जो भक्तों को अर्पित कर देते हैं, ऐसे हरि। हरि माने जो हमारे सब पापों को, हमारे अहंकार को, हमारे दुर्गुणों को, हमारे पापों को, हमारे अज्ञान को, हमारे अभक्ति भाव को, इन सबके सबका जो हरण करे उसका नाम हरि है। सबकी आत्मा और सबको अपनी आत्मा को प्रदान करने वाले भगवान जिन भावों से प्रसन्न होते हैं उनको गुरुदेव की सेवा में जाके अमाया अनुवृत्या प्रस्तुत करें और भगवान को प्रसन्न करें। श्रेय उत्तमम, इस प्रकार से उत्तम श्रेय की प्राप्ति होती है। माई डियर, भगवान की भक्ति बहुत सरल है, लेकिन वही वो जो हम लोगों ने दिव्य पथ की चर्चा की थी, दिव्य पथ का मतलब है कहीं नहीं जाना है तो भी प्राप्त हो जाए, और करोड़ों जन्मों तक चलते रहो न प्राप्त हो, वो उसका पथ है। तदूरे तदु अंतिके, उसी तरह से भगवान की प्राप्ति से सरल कोई काम नहीं है जो हमारे जैसे बेवकूफों को भी प्राप्त हो जाते हैं और बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े साधन संपन्न वालों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, वो तब दूरे। तो कैसे उनको नजदीक से अनुभव किया जाए, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत अनाया अनुवृत्या यही ही आत्मा आत्मदोहरी तुष्येत। श्री रमण बिहारी लाल की जय, राधे जय रमण बिहारी, जय नाथ नंदन जय
जय हलधारी, जय नंद नंदन जय हलधारी, जय राधे।